नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली मेट्रो का विस्तार राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के सुगम परिवहन को बढ़ावा देगा। केंद्र ने अरावली पर्वतमाला में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोहराया कि सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद और सशस्त्र समूहों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति है और देश अब सुरक्षित हाथों में है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु यीशु के जन्म का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये पर्व प्रेम और करुणा का संदेश देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ भविष्य के शांति समझौते में सबसे संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए अमरीका के राष्ट्रपति के साथ बैठक का अनुरोध किया। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और पंजाब में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ग्रैप 4 प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,015 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो के 5A चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस चरण के अंतर्गत 3 मेट्रो कॉरिडोर आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज को मंजूरी दी गई है। 13 नए मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़, एरोसिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर 1,419 करोड़, तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर 1,024 करोड़। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव।
भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन के 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी परिवहन को एक नई दिशा दी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो द्वारा लगभग 395 किलोमीटर के नेटवर्क पर कुल 12 मेट्रो लाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 289 स्टेशन हैं। दिल्ली मेट्रो आज राजधानी की जीवन रेखा बन चुकी है और प्रतिदिन औसतन 65 लाख लोग इससे यात्रा कर रहे हैं। आज स्वीकृत किए गए 3 नए कॉरिडोर से दिल्ली में आवागमन और आसान होगा, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र ने राज्यों को अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर रोक लगाना है। केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पहले से ही चालू खदानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप पर्यावरण की सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, अरावली पहाड़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में गलत सूचना फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि लोग विपक्ष के इस दुष्प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे।
कांग्रेस तो झूठ और भ्रम इसमें फैलाने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि अरावली में जो लगभग मुझे जानकारी जो दी है कि 1100-1200 माइंस में राजस्थान में 700 तो अशोक गहलोत के ही समय में दी गई हैं। ऐसे भ्रामक आंकड़ों में जनता नहीं आ रही है, उनका झूठ लगातार फेल हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ओपन है। तो अनावश्यक एक न्यायालय के निर्णय को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, जो उचित नहीं है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते।
मोदी सरकार की नई श्रम संहिताओं के साथ हर महिला को समान अवसर और समान काम पर समान वेतन की गारंटी, सहमति से सभी प्रकार के काम करने की आजादी, नाइट शिफ्ट से लेकर अंडरग्राउंड खनन हर कार्य में पूरी सुरक्षा की गारंटी, 26 हफ्तों की पेड मटर्निटी लीव, क्रेश सुविधा और वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य लाभों के तहत मेडिकल बोनस की गारंटी। नई श्रम संहिताओं और नारी शक्ति के साथ बढ़ेगा और बनेगा आत्मनिर्भर भारत, ये है पक्की गारंटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। हरियाणा के पंचकुला में आज क्रिभको द्वारा आयोजित मेगा सहकारी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कृषि बजट बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था और अब कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। ग्रामीण विकास का बजट जो कमोबेश कृषक जहां रहता है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है, वो 80,000 करोड़ था और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालकों के हित में काम कर रही है क्योंकि कृषि और पशुपालन से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है।
हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में आइसोलेशन में व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन करके एक नया मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा इंडिया कोऑपरेटिव टैक्सी शुरू की जाएगी। टैक्सी से होने वाला लाभ चालक को मिलेगा और ये भारत की नंबर एक टैक्सी सेवा होगी। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य है। इस दौरान श्री शाह ने भिवानी जिले के सलीमपुर गांव में हरियाणा डेयरी सहकारी विकास महासंघ द्वारा 3,30,00,000 रुपए की लागत से निर्मित वीटा मिल्क चिलिंग सेंटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने किसानों को प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी वितरित किए और बहुद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत समितियों को सम्मानित किया। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश के प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आवाज उठाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने नियमों को लागू करके, ई कॉमर्स को शामिल करके, उत्पाद दायित्व को लागू करके और ई फाइलिंग तथा वर्चुअल सुनवाई को सक्षम बनाकर उपभोक्ता ढांचे में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से 15 दिसंबर के बीच 63,800 शिकायतों का समाधान करके उपभोक्ताओं को 42,60,00,000 रुपए की धनवापसी की गई है।
गवर्नमेंट बिलीव दैट कंज्यूमर ट्रस्ट इज,
सरकार का मानना है कि उपभोक्ता विश्वास से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भौतिक और डिजिटल दोनों बाजारों में अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक गतिविधियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।
फिजिकल एंड डिजिटल मार्केट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार मादक पदार्थों और मानव तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्यों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। श्री शाह ने कहा कि कुछ वर्ष पहले देश में कानून व्यवस्था के मामले में 3 बड़ी चुनौतियां थीं, वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में सशस्त्र समूह। पंचकुला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के 10 वर्षों के बाद इन तीनों क्षेत्रों में शांति है और देश तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। लोक शिकायत और पेंशन सचिव रचना शाह ने आज कहा कि पेंशन अदालत जटिल और लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के मामलों के समाधान के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। नई दिल्ली में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए श्रीमती शाह ने बताया कि पिछले 14 सत्रों में 27,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई है, जिनमें से लगभग 70% का समाधान हो चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु यीशु के जन्म का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस खुशी और उल्लास का पर्व है जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें मानवता की सेवा के लिए ईसा मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच देश भर में क्रिसमस के जश्न की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। गोवा में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। आस्था, परंपरा और स्वादिष्ट व्यंजनों की मेजबानी को एक साथ लाने वाले क्रिसमस 2025 में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
गोवा और दमन के आर्क बिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराव ने अपना वार्षिक क्रिसमस संदेश जारी किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह पर्व मानवता के प्रति ईश्वर के अटूट प्रेम का उत्सव है। रायबंदर में चैपल परिसर में विशाल क्रिसमस क्रीब यानी झांकी बनाने की पुरानी परंपरा आज भी पूरे राज्य के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 35 वर्ष पहले शुरू की गई यह पहल बड़े और जीवन आकार की प्रतिमाओं के लिए शुरुआती उदाहरणों में से एक रही है। मिडनाइट मास यानी अर्धरात्रि की प्रार्थना के लिए खासकर पंजी के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और Our Lady of the Immaculate Conception जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में संपन्न बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता में संवेदनशील मुद्दों को हल करने के सिलसिले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी वक्तव्य के अनुसार श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि मियामी में आयोजित अमेरिका यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत में 20 सूत्री योजना पर लगभग सहमति बन गई थी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और पंजाब में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप पर उपसमिति ने वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के मद्देनजर आज पूरे एनसीआर में ग्रैप की मौजूदा अनुसूची के 4th चरण के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली मेट्रो का विस्तार राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के सुगम परिवहन को बढ़ावा देगा। केंद्र ने अरावली पर्वतमाला में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोहराया कि सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद और सशस्त्र समूहों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति है और देश अब सुरक्षित हाथों में है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु यीशु के जन्म का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये पर्व प्रेम और करुणा का संदेश देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ भविष्य के शांति समझौतों में सबसे संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए अमरीका के राष्ट्रपति के साथ बैठक का अनुरोध किया। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और पंजाब में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ग्रैप 4 प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाए गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।